जगन्नाथ जी के प्राकट्य पर चर्चा की थी कि कैसे जगन्नाथ जी इस रूप में आए, ये रूप क्यों आया जगन्नाथ जी का। और एक उस विषय में बहुत सुंदर इतिहास पुराणों में दिया गया है कि कैसे ये रूप जगन्नाथ जी का प्रकट हुआ, जिसमें वर्णन किया जाता है कि एक समय श्री कृष्ण की जो रानियां थी, श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे, अपनी 16,108 रानियों के साथ, और उनकी रानियां ये देखा करती थीं कि श्री कृष्ण द्वारिका में रहते हुए भी उनका हृदय, उनका मन सदैव ब्रज में है, वृंदावन में है, रात को सोते सोते भी उठ जाया करते और वृंदावन के वासियों को पुकारा करते, उनका नाम लिया करते। तो एक समय वे सारी रानियां रोहिणी माता के पास गईं, क्योंकि रोहिणी देवी ब्रज में रह चुकी हैं, देवकी ब्रज में नहीं रही थी, लेकिन रोहिणी ब्रज में रही थी देवकी, लेकिन वृंदावन में नहीं रही थी। लेकिन रोहिणी देवी वृंदावन में रही थी, उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं को देखा था, और जो भी लीलाएं श्री कृष्ण ने वृंदावन में की रोहिणी देवी ने देखी थी, इसीलिए सारी जो रानियां हैं वो उनके पास गईं और उनसे पूछ, मन में ऐसा क्या है, यहां सारा ऐश्वर्य है, इतने महल हैं, इतना ऐश्वर्य है, दास दासियां कोई चीज की कमी नहीं है, ऐश्वर्य धन सब, लेकिन श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं है, वे तो केवल ब्रजवासियों को याद करते हैं। और ब्रज में है क्या वृंदावन में, वहां तो कोई बड़े बड़े महल नहीं है, श्री कृष्ण तो कोई बहुत बड़े महलों में नहीं रहते थे, राजा की तरह तो गाय चराया करते थे, जंगल में जाया करते थे अपने मित्रों के साथ, कोई उनके लिए बहुत बड़े रथ नहीं निकलते थे जब श्री कृष्ण जाते थे, पैदल चलकर जाते थे। लेकिन यहां द्वारिका में जब वो बाहर निकलना चाहते हैं, रथ तैयार है उनके लिए। तो रानियां कहने लगी कि इतना सब होते हुए भी उस वृंदावन को क्यों याद करते हैं, ऐसा क्या है उसमें। तो रोहिणी देवी ने कहा कि तुमने अभी वृंदावन की माधुर्यता को नहीं समझा, वृंदावन के प्रेम को नहीं समझा, तुमने केवल ऐश्वर्य देखा है, लेकिन माधुरता या प्रेम ये ऐश्वर्य से बड़ा होता है। देखिए, कभी कभी हम लोग इस जीवन में बहुत से धन या ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते। व्यक्ति को इस जगत में क्या चाहिए, धन या प्रेम? धन मिल सकता है लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति प्रसन्न होता है प्रेम से। रोहिणी देवी ने कहा कि तुमने अभी वृंदावन की माधुर्यता को नहीं जाना, अगर तुम वहां की मधुर लीलाओं को सुनोगी तो तुम जान जाओगी कि कृष्ण का हृदय वृंदावन में है और कैसा प्रेम है ब्रजवासियों का। ब्रजवासियों का अगाढ़ प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, किसी अन्य प्रेम की तुलना नहीं की जा सकती उस प्रेम से जो ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति है आज भी। ये तो उस समय की बात है जब श्री कृष्ण लीला कर रहे थे इस पृथ्वी पर, लेकिन आज भी हम देखते हैं वृंदावन में, ब्रज में जो प्रेम, जो विश्वास भक्तों को, वहां के लोगों को श्री कृष्ण पर है, वो अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। एक बार हम जगन्नाथपुरी में गए थे, वृंदावन की तो बात ठीक है, वो तो इतने ज्यादा प्रेमी हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में भी एक समय हम गए थे, रात्रि का समय था, हम लोग करीब 12-1 बजे दर्शन कर रहे थे भगवान के। उस दिन भगवान के दर्शन खुले थे। जगन्नाथपुरी में सब कुछ भगवान की इच्छा से चलता, कोई नियम नहीं है। हमारे मंदिर में तो 8 बजता है दरवाजा बंद हो जाता है, अब 8:05 पे आइए दर्शन नहीं होंगे रात को। जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं है, वहां भगवान की इच्छा से चलता है। और वहां के बड़े बड़े नियम हैं, जिस दिन भगवान की शेविंग की जाती है उस दिन रात को 2-2 तक भगवान सोते नहीं है, क्योंकि उनको नहलाया जाता है इत्यादि। तो हम वहां पर थे, पंडित थे वहां के, जो उनके भक्त हैं जगन्नाथ जी के, उनसे बात कर रहे थे। और हम दरअसल जानना चाहते थे कि कैसे उन्हें इतना प्रेम है जगन्नाथ जी से। उन लोगों को पूरा विश्वास है, लड़की की शादी करनी है जगन्नाथ देखेंगे, वे होना है जगन्नाथ देखेंगे, कोई उनको चिंता नहीं है। ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, मैं ये कर लूं वो कर लूं, जगन्नाथ देखेंगे, पूरा विश्वास। तो हमने उनसे कहा कि कैसे आपको विश्वास है, तो उन्होंने हमसे कहा कि अरे जगन्नाथ के साथ हम केवल इसी जन्म में थोड़ी हैं। वो कहने लगे कि जब पहले रूप में जगन्नाथ आए, जब रामचंद्र जी के रूप में आए तब हम लोग वानर बने थे उनकी सेवा करने के लिए, जब कृष्ण के रूप में आए थे तो हम लोग ग्वाल बाल बने थे उनकी सेवा करने के लिए, और अब जब इस जगन्नाथ रूप में यहां प्रकट हुए हैं हम पंडे बने हैं इनकी सेवा करने के लिए। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा कि वो शाश्वत हमारा संबंध है, जहां भी कृष्ण जाते हैं हम उनके साथ जाते हैं। हम सबको ये विश्वास नहीं है, हमें तो लगता है बस अभी अभी 1-2 हुआ हमने कृष्ण को जाना है, 10-15। लेकिन उन लोगों का भाव देखिए, वो कहते हैं हम तो कभी छोड़ते ही नहीं कृष्ण को, इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में हमने छोड़ा नहीं कृष्ण को। तो ऐसा भाव, इससे भी तीव्र भाव प्रेम का वृंदावन के वासियों का है। तो रोहिणी देवी ने कहा मैंने देखा है वो प्रेम, क्योंकि आप लोगों ने देखा नहीं। किसी भी रानी ने, जब उनका विवाह हुआ तो श्री कृष्ण द्वारका आ चुके थे और वो वृंदावन घुमाने ले नहीं गए श्री कृष्ण उनको। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि शादी के बाद श्री कृष्ण का चलो मैं अपने बचपन की, जहां मैं स्कूल में पढ़ता था, कभी कभी लोग ले जाते हैं ना दिखाने के लिए, श्री कृष्ण लेकर नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको वहां की लीलाएं सुनाती हूं, केवल वो लीलाएं सुनकर आपको ज्ञान हो जाएगा कि क्या स्तर है उन लोगों का, क्यों कृष्ण स्मरण करते हैं उनको। लेकिन एक शर्त है, कृष्ण और बलराम नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर वो आ गए और उन्होंने इन लीला को सुन ली तो छोड़कर चले जाएंगे, फिर वो द्वारिका में नहीं रहेंगे। तो क्या किया जाए, रोक तो कोई सकता नहीं, रानियां तो रोक नहीं सकती, पत्नियां कैसे रोकेंगी कृष्ण को अंदर नहीं जाना। तो सुभद्रा को एक कार्य दिया गया, बहन है, बहन को कुछ कहते नहीं है, राम और बलराम, कृष्ण और बलराम कुछ नहीं कहेंगे। सुभद्रा को कोई और रानी खड़ी होकर अगर 16108 में से खड़ी हो जाएगी दरवाजे पे और कृष्ण और बलराम को कहेगी अंदर नहीं जाना, तो बलराम जी का तो गदा उठ जाएगा, अरे नहीं। लेकिन सुभद्रा है, उसको क्या कह सकते हैं। तो सबने कहा सुभद्रा खड़ी होगी, बहन है तो बहन, छोटी बहन है, तो उसको खड़ा कर दिया दरवाजे पर कि अंदर नहीं आने देना दोनों को, जब तक मैं अंदर ब्रज की कथाओं को सुना रही। तो खड़ी हो गई दरवाजा बंद करके, बाहर खड़ी है। और जब रोहिणी देवी ने कथा कहनी शुरू की, सुभद्रा के मन में भी आया मुझे भी तो सुनना है, मुझे बाहर खड़ा कर दिया है और इतनी अच्छी अच्छी लीलाएं अंदर हो रही हैं। और बहुत सी लीलाएं थी, देखिए हम जो भागवत में पढ़ते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने बहुत थोड़ी लीलाओं को कहा है, कृष्ण हर रोज लीला करते थे। सुखदेव गोस्वामी ने कितना कहा, जब कुछ दिन के थे तो पूतना को मारा, फिर कुछ महीने के हो गए तो ये किया, फिर बड़े हो गए, पूरा बीच का तो छोड़ दिया, हर रोज की कथा तो नहीं सुनाई, सुना भी नहीं सकते थे, परीक्षित महाराज के पास समय ही कम था। लेकिन रोहिणी देवी ऐसी ऐसी लीलाएं सुनाने लगी उनको, ऐसी कृष्ण की लीलाएं, और सुभद्रा ने सोचा मुझे भी सुनना है, तो सुभद्रा ने कान लगा लिए, सुनने लगी सुभद्रा। और जैसे जैसे सुभद्रा सुन रही थी उनके हृदय में भाव बढ़ रहे थे। सुभद्रा ने भी तो नहीं देखे थे ये लीलाओं को, तो सुभद्रा बहुत भाव विभोर हो गई। सुन सुन के आंखें बड़ी होने लगी, हाथ अंदर जाने लगे, और ऐसे रूप में थी उसको अपना कुछ पता नहीं, बाहरी चेतना खो बैठी। और सामने से कृष्ण बलराम आ गए। कृष्ण बलराम ने बाहर देखा, अरे ये सुभद्रा को क्या हो गया, इतनी बड़ी बड़ी आंखें कैसे हो गई, हाथ पांव अंदर जा रहे, क्या हो रहा है, दरवाजा क्यों बंद करके खड़ी है। उन्होंने भी सुनना प्रारंभ किया क्या चल रहा है अंदर। और जब कृष्ण और बलराम ने सुना अपनी ही लीलाओं को, देखिए जब भगवान अपनी ही लीलाओं को सुनते हैं वो भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान रामचंद्र ने भी अपनी ही लीलाओं को लव कुश से सुना। जब श्री रामचंद्र को पता चला कि दो ऋषि पुत्र, दो बालक घूम रहे हैं अयोध्या में, और रामचंद्र जी की मेरी ही कथा को कह रहे हैं और सारे लोग सुनकर आनंद ले रहे हैं, तो रामचंद्र जी का बुलाव उन्हें, पूरी सभा लगी, अपने भाइयों समेत, सेनापतियों समेत, सारे मंत्रियों समेत राजा बैठ गए, रामचंद्र जी सुनाओ कथा, अपनी ही कथा सुन रहे हैं और उन्हीं के सामने लव कुश सुना रहे हैं। एक राजा था दशरथ, उसकी कोई संतान नहीं थी, फिर उसकी चार संतानें हुई, उनमें से सबसे बड़े राम इत्यादि, और उनको ही सुन रहे, आनंद ले रहे। वैसे हम सबको भी अपनी कथा सुनने में आनंद आता है ना, कभी कोई आकर सुनाए, एक व्यक्ति था जिसका जन्म कारवार की एक छोटी सी गली में हुआ इत्यादि इत्यादि, है हमें भी अच्छा लगा, कितना अच्छा है, भगवान को भी अच्छा लगता, वो भी एक व्यक्ति है, उनके भी भाव हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण सुनने लगे तो उनके भी हाथ अंदर चले गए, उनकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, ये रूप आई, ये रूप भक्त वत्सल रूप है भगवान का। तो उस समय नारद मुनि वहां आ गए और नारद मुनि ने देखा ये तीनों को क्या हो गया, सुभद्रा, बलराम और कृष्ण एकदम आंखें बड़ी बड़ी, हाथ पांव अंदर जा रहे हैं। नारद मुनि जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। और जैसे ही नारद मुनि ने चिल्लाया सब अपने होश में आ गए, कृष्ण आ गए, क्या हो गया, कौन चिल्ला रहा है, तो सब नॉर्मल आ गए वापस से। तो श्री कृष्ण ने नारद मुनि को कहा, क्या देख लिया तुमने, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। तो नारद मुनि ने कहा, मैंने देख लिया आपका वो रूप, आपका भक्त वत्सल रूप। और फिर नारद मुनि ने प्रार्थना की कि भगवान मैंने तो देख लिया, लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए, इतना सुंदर रूप था आपका, इतना प्रेम टपक रहा था उस रूप से। तो भगवान ने नारद मुनि को आशीर्वाद दिया कि ठीक है, कलयुग में मैं इस रूप में निश्चित प्रकट होऊंगा। वैसे भगवान जगन्नाथ की पूजा अभी से नहीं चल रही है, ये तो इस ब्रह्मा जी के दिवस में पहले मनु हुए जिनका नाम था स्वयंभू मनु, और दूसरे मनु हुए स्वरोचिष मनु। ये दूसरे मनु के समय से पूजा चल रही है जगन्नाथ जी की, आज से प्रारंभ नहीं हुई है। तो इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि हमें अभी अभी पता चला जगन्नाथ कौन है, हमने तो कभी देखा भी नहीं था, तो शायद कोई नए भगवान होंगे। नए भगवान नहीं है, इनकी पूजा तो करोड़ों करोड़ों सालों से चल रही है और ये रूप भी करोड़ों सालों से है भगवान का। तो ऐसे जगन्नाथ जी का रूप ये प्रकट हुआ। कभी कभी हम लोग जब इन सारी कथाओं को सुनते हैं, जैसे अभी हम आगे रथ यात्रा का वर्णन करने वाले हैं कि रथ यात्रा में क्या क्या होता है, रथ यात्रा का जो पूरा उत्सव है उसमें 11 उत्सव होते हैं। रथ यात्रा एक ही उत्सव नहीं है, वो 11 उत्सवों से भरा हुआ है। तो उनका एक एक वर्णन करेंगे कि कैसे 11 उत्सव होते हैं, लेकिन उससे पहले वर्णन करना चाहते हैं कि कभी कभी हम सबके मन में ये विचार आता है कि ये जो कथाएं हैं, ये भगवान की आंखें बड़ी हो गई, हाथ अंदर चले गए, हमारे तो कभी नहीं होते। हम लोग भी तो सुनते हैं, और ना तो हम लोग किसी को देख रहे हैं कि किसी का हुआ हो, तो फिर ये सत्य है या कल्पना है, या किसी ने मनगढ़ंत कथा कह दी, चली आ रही है काफी समय से, और फिर कुछ अंधविश्वासी लोग इस पर विश्वास कर लेते हैं, तो भगवान है या नहीं है। दरअसल ये जो आधुनिकता हुई है, हम लोग आधुनिक हो गए हैं, मॉडर्न जिसको कहते हैं, प्रगति हमने जो कर ली है, तो ये प्रगति से क्या हुआ है, इस प्रगति ने हमें एक प्रश्न हमारे मन में ले आया है। क्या प्रश्न आया है कि इस आधुनिक समय में भगवान की क्या आवश्यकता है, भगवान का क्या भाग है, भगवान की क्या भूमिका है इस आधुनिक जगत में। क्योंकि हमें कोई आवश्यकता नहीं है भगवान की, ऐसे लोग सोचते हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा लोग सोचते हैं कि हमें क्या आवश्यकता है भगवान की, तो फिर भगवान की क्या भूमिका है इस आधुनिक समय में। और ये आधुनिक समय क्या हुआ है, आधुनिक समय में हमने क्या देखा है, हमने केवल इतना देखा है कि लोगों ने प्रजातंत्र के नाम पर, कि प्रजातंत्र होना चाहिए, सेक्युलरिज्म, क्यों नहीं तो लोग झगड़ा करेंगे, धर्म के नाम पर दंगे होंगे, इसीलिए हमें प्रजातंत्र को रखना है। और उससे क्या हुआ, हो सकता है थोड़े बहुत दंगों को रोका गया हो, लेकिन भगवान को अलग कर दिया गया, भगवान को समाज से अलग कर दिया गया प्रजातंत्र के नाम पे। और आज ऐसा हो गया है कि धार्मिक बातें करना नहीं नहीं, आप स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, कहीं और जाइए, आप कहिए कि हमें भगवान के विषय में बोलना है, प्रिंसिपल कहते नहीं नहीं हमारे स्कूल में अलाउड नहीं, अनुमति नहीं है, हम किसी एक धर्म की बात नहीं कर सकते। अरे आप सब धर्मों की बात कीजिए, कहां मनाई है। प्रजातंत्र का अर्थ ये नहीं है कि हम सारे हम लोग धर्म को निकाल दें, उसका अर्थ है कि सभी धर्मों को समान हम लोग आदर दें। तो इसीलिए ये जो सेक्युलरिज्म के नाम पर या फिर धर्म निरपेक्षता के नाम पर हम लोग धर्म को निकाल रहे हैं, ये आधुनिकता हो रही है हमारी। और क्या हमारी आधुनिकता हो गई है, हम लोग सोचते हैं कि आजकल भगवान ने आदान प्रदान करना बंद कर दिया है ना, कहीं सुनते हो आप लोग, व्यक्ति मंदिर में गया और अचानक भगवान बोलने लगे, आओ बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भगवान नहीं बोलते, अब भगवान के देवी देवता भी नहीं बोलते, पहले तो कम से कम कहीं कहीं सुनते थे कथाओं में देवी देवताओं ने बोलना शुरू किया, आज तो कोई किसी मंदिर में जाओ कोई नहीं बोलते खड़े, तो लगता है ये क्या है, कुछ उपयोग है, भगवान ने बोलना बंद कर दिया। और कोई चमत्कार नहीं है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता था एक्सीडेंट हुए अचानक पूरा बच गया, कोई एक्सीडेंट इतने हो रहे, भगवान कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हर रोज मर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मंदिरों में जाइए तो मंदिरों में क्या है, मंदिरों में जाके व्यक्ति को एक ही चीज बोली जाती है, इतने रुपए का ये यज्ञ कराओ तब तुम्हारा ये सब ठीक होगा, ये तकलीफ है ये कराओ, रीति रिवाजों में फंसा दिया गया। तो व्यक्ति सोचता है क्या लाभ है। तो ना तो मंदिरों में भगवान ने अभी आजकल आदान प्रदान करना जारी रखा है, ना ही मंदिर कोई आध्यात्मिक ज्ञान को देते हैं। और आधुनिकता में क्या हुआ है, हम लोगों ने ऋषियों की परंपरा को बाहर कर दिया है। आप बताइए आधुनिक समाज में, आप लोग नेवी में काम करते हैं या कहीं और काम करते हैं, बताइए कौन से ऋषि परंपरा को आप लोग रोज प्रणाम करते हैं। हम लोग ने आधुनिकता के नाम पर बाहर कर दिया ऋषि परंपरा को, साधुओं को जीवन से बाहर कर दिया। साधु को देखते एक ही मन में आता है कि बस थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए घर में सब ठीक हो जाए, बस भगवान का स्मरण नहीं आता। कोई साधुओं से आकर ये आशीर्वाद नहीं मांगता कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कृष्ण मेरे हृदय में आए, आशीर्वाद ये मांगते कि दीजिए जीवन अच्छा चले, धन धन संपत्ति आए, कोई बीमारी नहीं आए, सुखी रहे, यही आशीर्वाद मांगते हैं साधुओं से। क्यों नहीं कोई आशीर्वाद मांगता कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कृष्ण मेरे हृदय में आए, क्योंकि हम आधुनिक हो गए हैं, हमने प्रगति कर ली है और हम सोचते हैं कि धन ही सब कुछ है। व्यक्ति धन के पीछे भागता है, आध्यात्मिक कार्यों के पीछे नहीं। इसीलिए देखिए, मंदिर आना भी, अगर उनका व्यापार चल रहा है, धन कमाना है, तो पहले धन कमाएंगे फिर मंदिर आए। तुम धन के पीछे व्यक्ति भाग रहा। और ये जो भारत भूमि है, बड़ी पावन भूमि, भारत की प्रमुखता थी, भारत प्रसिद्ध था अहिंसा के लिए। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, अहिंसा भारत से प्रारंभ हुई। और आज भारत की क्या स्थिति है, 60% से ज्यादा नागरिक भारत के मांसाहार करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गाय का मांस एक्सपोर्ट करने वाला देश है। ये भारत है, आधुनिक भारत, जिस भारत में गायों की रक्षा की जाती थी। आप पुराण पढ़िए, पुराण भरे पड़े हैं, इतिहास भरे पड़े हैं कि गायों की रक्षा करने के लिए कैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े लोगों ने, राजाओं ने, राजा दिलीप की कथा आती है कि केवल गाय की रक्षा करने के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार थे वो। तो राजाओं ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े भक्तों ने, बड़े बड़े लोगों ने, साधारण लोगों ने भारत के गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए, प्राण तक देने की बात कही है। लेकिन आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा गाय का मांस बाहर भेजने वाला एक्सपोर्टर है। ये आधुनिकता है। तो इसलिए हमने भगवान को अपने जीवन से निकाल दिया है आधुनिकता के नाम पर। और उसका क्या फल हुआ है, उसका फल ये हुआ है कि हम लोग अब ये भूल चुके हैं कि हमारा अगला जन्म होगा, हमें कर्मों का फल मिलेगा। ये भय ये निकल गया है हृदय से। कोई पुनर्जन्म की बात नहीं करता। देखिए धीरे धीरे आधुनिकता ने कितना प्रभाव कर लिया है। आज से 100 साल पहले हर घर में, हर गांव में कोई भी व्यक्ति ये बोल दिया करता था, अरे अगर मैं ये करूंगा तो मेरा अगला जन्म क्या होगा, फिर मुझे अगले जन्म में ये बनना पड़ेगा। हम लोग बचपन में सुनते थे, जब छोटे थे तो हम लोगों को घर में बताया जाता था, ये नहीं करो नहीं तो अगले जन्म में ये बन जाओगे। बचपन से हम लोग इसको सुन रहे हैं। लेकिन आज आधुनिकता में क्या हुआ है, पुनर्जन्म की कोई बात नहीं करता। कोई सोचता नहीं कि मैं मांस खा रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मैं धोखा दे रहा हूं, मैं धन लूट रहा हूं, क्या फल होगा मुझे इसका। क्यों, बस अभी जियो, अभी जो करना है कर लो, आगे की किसने देखी। ये आधुनिक समाज हो गया। और इस आधुनिक समाज ने हमारे हृदय से ये भय कि कर्म अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे इसका फल भुगतना पड़ेगा, अगला जन्म खराब होगा। लोग पहले बहुत कहा करते थे, आप लोग पूछिए अपने घर के बड़े बूढ़ों से, लोग कहा करते थे मैं अपना अगला जन्म खराब नहीं करना चाहता हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूं, लोगों को पता था। आज के आधुनिक समाज में कौन बात करता है बताइए, वो बात करते हैं कितना धन कमा लूं। मरते मरते भी व्यक्ति धन कमाना चाहता। तो ऐसे समाज में भगवान को बाहर कर दिया गया, जीवन के मूल्य नहीं रहे हैं, लोग एक दूसरे को विश्वास नहीं करते हैं। देखिए धीरे 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 हम जिस समाज में ही रह रहे हैं, उसी समाज में लोग आपस में विश्वास नहीं करते एक दूसरे पर। और तो बात छोड़िए, मंदिर में भी अगर कल को कोई आ जाता है मंदिर में, कभी कभी कोई आते कहते हम रहना चाहते, हम लोग विश्वास नहीं करते, अरे कहां से आया है, पता नहीं क्या करेगा, मंदिर में रहने दे कि नहीं। पहले तो हरेक के घर खुले होते थे, कोई भी व्यक्ति घर में चला जाए, बैठने के लिए उसको छांव होती थी, पीने के लिए कुछ दिया जाता था। आज मंदिरों में भी हम लोग विश्वास नहीं करते। ये आधुनिकता हो गई, इसका कारण भगवान से दूर आना। तो कोई भय नहीं रहा, जीवन के मूल्य नहीं रहे, लोग विश्वास नहीं करते एक दूसरे पर। विश्वास क्या, जो जो चीजें चाहिए, जैसे धैर्य, व्यक्ति को धैर्य होना चाहिए, हृदय में नम्रता होनी चाहिए और दूसरों के प्रति आदर होना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि अगर भगवान का भजन करना है तो ये तीन चीजें होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए और दूसरों को आदर देने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन कहां धैर्य है, हम तो किसी की बात सुनना नहीं चाहते, किसी की बात को समझते नहीं है। आज का समाज ये है, हम सोचते मैं जो समझ रहा हूं वही गलत सही है। नहीं, कभी कभी जब चीजें कही जाती हैं हमें, हो सकता है वो सही हो, हमारी दृष्टि से वो गलत है, देखने की दृष्टि। इसीलिए लोग भक्ति को गलत मानते हैं, ये आप क्या बैठे बैठे हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो आपके देखने की दृष्टि जरूरी नहीं है सही हो, क्योंकि कभी कभी जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वो सही होगा, आप नहीं समझ पाते। जैसे उदाहरण देते हैं, एक बार एक शिक्षिका थी, टीचर थी, उन्होंने सोचा कि बच्चे, छोटा बच्चा था तो उसको मुझे कुछ सिखाना है कि कैसे एक दो तीन जोड़े जाते हैं। तो उन्होंने उससे प्रश्न किया कि बेटा, अगर मैं तुम्हें एक सेब और एक सेब और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे। तो वो सिखाना चाहती थी कि एक को एक को एक को जोड़ो तो कितना होता है, स्वाभाविक उत्तर होना चाहिए तीन सेब। तो उस लड़के ने तुरंत जवाब दिया, चार सेब होंगे मेरे पास। टीचर ने कहा, लगता है इसने ठीक से सुना नहीं। तो उसने फिर से पूछा कि बेटा, मैं तुम्हें पूछ रही हूं कि अगर मैं तुम्हें एक सेब और एक सेब और एक सेब दूं तब तुम्हारे पास कितने सेब होंगे। बेटे ने कहा, चार। टीचर को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने नियंत्रण कर लिया। उसने सोचा कि शायद इसको सेब पसंद नहीं है, तो मैं कुछ और पूछती हूं। तो उसने पूछा कि अच्छा, अगर मैं तुम्हें संतरा दूं तो अगर मैं तुम्हें एक संतरा और एक संतरा और एक संतरा दूं तो कितने होंगे। तो लड़के ने कहा, तीन। टीचर बहुत खुश हो गई कि सीख गया, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि जब एप्पल सेब पूछ रही तो चार क्यों बोले। तो उसने कहा, अब पूछती हूं। तो तीन से संतरे हो गए। हाँ, फिर से पूछा, अब मैं तुम्हें अगर एक सेब दूं, एक सेब और एक सेब और एक सेब, कितने सेब होंगे। उसने कहा, चार। टीचर बोले, तो बड़ा दुखी हो गए। तो उसने पूछा, गुस्से में आगे, बोले कैसे चार होंगे, एक 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 तीन ही तो होंगे ना। लड़के ने कहा, एक मेरे बैग में भी तो है ना। तो चार हो गए ना। वो बेचारा क्या करे, वो तो सोच रहा था टीचर देगी तो चार हो जाएंगे, गलत तो नहीं बोल रहा था। वो टीचर सोच रही थी एक 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 तीन होने चाहिए, बोले एक मेरे बैग में है। तो बच्चे ने सही कहा था, उत्तर सही था उसका, टीचर सोच रही थी गलत। इसी तरह हम लोग भी इस धैर्य को, धीरज को खो बैठते हैं। किसी को धैर्य नहीं है इस आधुनिक युग में। धीरज नाम की चीज धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर देते हैं कुछ खाने का, और पांच मिनट में अगर नहीं आए, पांच सात मिनट में, तो सब इधर उधर घूमने, बार बार वो दरवाजे की जहां से लेकर आ रहा है उसको देखते हैं, कुछ नहीं तो फिर बुलाते हैं, अभी तक क्यों नहीं आया हमारा। धैर्य नहीं, लाइन में खड़े हैं और अचानक अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा आगे दूसरा निकल जाता है तो हंगामा हो जाता है लाइन में, और लाइन में खड़े रहने का धैर्य नहीं। गाड़ियां, अगर आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हो जाए ट्रैफिक में, किसी को धैर्य नहीं कि आराम से खड़ा रहे, कुछ होने वाला नहीं है, जब तक आगे की गाड़ी नहीं जाएगी हिल नहीं सकते, पा 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 हटाओ। अरे क्या होगा हॉर्न मारने से, जब तक गाड़ी आगे से नहीं जाएगी वो तो होना नहीं। तो कभी कभी ट्रैफिक जाम होता है, इतना हॉर्न बजाते, किसी को धैर्य नहीं। ट्रेन की लाइन अगर कहीं खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां जाते हैं, कहीं धैर्य नहीं। तो ये धीरज चला गया है, तो धैर्य नहीं है, नम्रता नहीं है और दूसरों के प्रति आदर समाप्त हो गया। इसका कारण हमने भगवान को जीवन से निकाल दिया। तो भगवान का क्या भूमिका है आधुनिक समाज में, इसको हमें जानना चाहिए। भगवान की पहली भूमिका है आधुनिक समाज में हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को बताना, इस दिशा विहीन समाज को दिशा देना। हमारी क्या दिशा है? ये जो समाज भाग रहा है पैसे कमाना, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, इसकी दिशा कहां है? आदमी जा कहां रहा? कोई दिशा नहीं। अभी पिछले कुछ समय में बहुत सारे लोगों के पैसे निकले, करोड़ों करोड़, है ना, किसी के पास रोज आ रहा है। हम सुन रहे, कोई कोई आके कह रहा है जी वहां पर दोस्त कितना 25 करोड़ निकला, इसके पास 20 करोड़ निकला, ये निकला वो निकला। इतना तो छोड़िए, घरों में भी झगड़े हो गए हैं क्योंकि पत्नियों ने जो बहुत समय से बचा बचा के रखे थे 500 हजार के नोट, अब उनको निकालने पड़ रहे, क्या करे वो। और निकाला तो पति ने पूछा ये कहां से आया है तुम्हारे पास, अब झगड़े हो रहे हैं वहां पर के। पता चल गया सारे पतियों को कि कितना, हजारों रुपया। और हर महीने वो पत्नियां कहती थी पैसा नहीं है खरीदने के लिए, पैसा दो, रब निकला हजारों रुपये, कहां गया था पैसा सब। खैर वो भी अच्छा है, करना चाहिए, वो गलत नहीं है, वो पत्नियों का अधिकार है, उनको करना चाहिए। तो लेकिन ये सब हो रहा है, तो धन के पीछे तो सारा सब कुछ चीजें धन के पीछे। दिशा कहां है? क्या यही दिशा है हमारे जीवन की? हम थोड़ा धन कमा लें, थोड़े बड़े हो जाएं, कुछ पाले। देखिए व्यक्ति जीवन भर, आज बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी उम्र हो गई 60 साल, 70 साल या जितना भी हो। अभी कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी कंपनी के एक सीईओ बने थे, मतलब प्रमुख बने थे, तो बड़ा बड़ा पेपर में आया कि बड़ी कम उम्र में ये इतने, मतलब इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। कितनी उम्र थी उनकी? 55। हमने कहा कम उम्र में, अगर 20 साल की उम्र में बने होते तो ठीक था कि कम उम्र में, तो वो उनके लिए कम उम्र है क्योंकि बाकी जितने भी हैं वो 70 के करीब हैं सारे। तो अब 70 साल के हो गए, 70 क्रॉस कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? सुबह दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, शाम को बॉम्बे भाग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, रोज हेडेक ले रहे हैं, हमारी कंपनी का रेट डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कहां से आए, मिनिस्टर को मिलो, इसको मिलो। दिशा कहां है? किस दिशा में जा रहे हो? क्या प्राप्त कर रहे हो? इसीलिए समाज दिशा विहीन है। क्यों? क्योंकि यही लगता है कि धन कमाने से सुख आएगा, और सुख आ नहीं रहा। हम लोग तो खुश होंगे कि अगर धन कमाने से व्यक्ति सुखी हो जाए, जितना धन कमाना है कमाए, लेकिन सुख आ नहीं रहा। इसीलिए भगवान की भूमिका इस आधुनिक युग में पहली ये है कि वो दिशा दिखाते हैं कि किस दिशा में जाना है, मार्गदर्शन करते हैं कि क्या उद्देश्य है जीवन का। हम सब प्रसन्न होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, सुख है नहीं जीवन में, केवल कष्ट है। सुख क्या है हमें यह भी नहीं पता। हम जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं, जिसको सुख मान रहे हैं, वो तो सुख है ही नहीं, क्योंकि अगर वो सुख होता तो फिर उसके आगे नहीं जाते हम। एक बार कुछ हो गया, बस सुख मिल गया, अब आगे नहीं चाहिए। जैसे व्यक्ति एक बार कृष्ण भक्ति का सुख ले ले, वो और कुछ नहीं देखता, फिर उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों ने शराब में सुख ढूंढना शुरू किया, शराब पी सुख कम हो गया तो फिर और आगे बढ़ गए, ड्रग्स लेने लगे, ड्रग्स में लिए थोड़े समय रहे कम हो गए, अब केमिकल्स लेने लगे। आपको पता नहीं है, आप लोग भाग्यवान हैं, लेकिन दुनिया में लोग किस किस तरह का नशा कर रहे हैं। लोग अपने आप को विषैले जानवरों से कटाते हैं, डंक मारे काटे, उससे नशा चढ़ता। ये आश्चर्य की बात है, लोग कर रहे हैं क्योंकि अब शराब में नशा बचा नहीं, शराब अभी नीचे लोगों के लिए, फिर उसके बाद ड्रग्स, उसके बाद और केमिकल्स, फिर ये पॉइजन, कुछ कुछ करते जा रहे हैं। देखिए जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे तब भी ये लोग यही चीज कर रहे थे कि उन्होंने शराब में नहीं तो फिर नशा लेने लगे, LSD और पता नहीं क्या क्या। इसीलिए कई बार तो ये भी प्रसिद्ध हो गया कि इस्कॉन के सारे लोग नशे में नशा करते हैं, है ना, दम मारो दम, राइट। एक फिल्म के कलाकार ने कोई पिक्चर ही बना दी कि सारे ये इस्कॉन वाले सब दिन भर दम मारो दम करते रहते हैं और कुछ है नहीं करने के लिए। यार सही में हमसे आज भी वो पिक्चर कब आई थी किसी को पता है, कौन से साल में? 70s में थी, 1970 के दशक में, पता नहीं कब आई थी, जो भी उस समय आई थी। लेकिन आज भी लोग पूछते हैं क्या आप इस्कॉन से हो? हाँ, हमने तो सुना इस्कॉन में तो सब हम लोग बताइए, हम लोग इधर इतनी तपस्या करे, ये करे, सुबह 3:30 बजे उठ के मंगल आरती और शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, नमक, हम लोग प्याज लहसुन इतना सब करें और सुनने क्या मिलता है? आप लोग इस्कॉन से हो? इस्कॉन में तो सब। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्रभुपाद ने उन लोगों को, प्रभुपाद अनुयायी हैं चैतन्य महाप्रभु के, और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सबसे जो निचले स्तर पर हैं जगाई मधाई, उनका उद्धार करके दिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने के, कि ये महाप्रभु की शक्ति। जिस समय नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर गए थे जगाई और मधाई का उद्धार करने, हरिदास ठाकुर ने मना किया था कि क्या कर रहे हो, ये लोगों का सारे पापी हैं, लोग जाते नहीं उनके पास, झगड़ा करना, मारना, ऐसा कोई काम नहीं जो उन्होंने नहीं किया। एक स्थान पर तो लिखा गया है कि चित्रगुप्त भी लिखते लिखते थक गए, इतने पाप कर चुके थे दोनों। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अगर हमने इन्हें भक्त बना दिया तो दुनिया जानेगी कि महाप्रभु की क्या शक्ति है। और इसी तरह प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने सोचा कि अगर मैंने इन नशेड़ियों को, इन हिप्पियों को, ये जो दिन भर नशे में रहते हैं, सारे नियम तोड़ रहे हैं, अगर इनको मैंने नियम का जीवन दे दिया, अगर ये नियम पालन करने लगे तो सारी दुनिया पालन करेगी, सारी दुनिया देखेगी। और ये सत्य है। जैसे ही प्रभुपाद ने ये किया, जैसे ही जगाई और मधाई का उद्धार हुआ, सारी जगह बात फैल गई, जगाई और मधाई भक्त बन गए, लोग देखने आने लगे, एक घाट हो गया उनके नाम पर पूरा जहां पर वो सेवा करते थे, लोग देखने दूर दूर से आने लगे कि जगाई मधाई बदल कैसे लगे। और यही चीज प्रभुपाद ने की। प्रभुपाद अमेरिका गए और वहां उन लोगों को जो नीचे एकदम, जिन्होंने समाज के सारे नियमों को तोड़ दिया था, जैसे चाहे वैसे रहते थे, उन लोगों को भक्त बनाए, उन लोगों को नियम में लेकर आए प्रभुपाद। उन लोगों ने नियम पालन करने शुरू कर दिए। ऐसे लोग, ऐसे समाज जहां वो लोग मांस खाए बिना, शराब पिए बिना रहते नहीं थे, उन्होंने शराब छोड़ दी, मांस खाना छोड़ दिया, उनके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। उदाहरण है, प्रभुपाद के एक शिष्य थे जो, जिन्होंने छोड़ दिया मांस खाना, तो उनके माता पिता बड़े दुखी हो गए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, मांस नहीं खाएगा तो जिएगा कैसे, क्योंकि उन्होंने कभी भारत देखा ही नहीं आकर के। भारत में तो लोग बोले मांस खा रहे, दूर खड़े हो जाओ, है ना, मंदिर में अंदर नहीं बाहर खड़े रहो। तो वो कैसे जिएगा, इसलिए वो कभी कभी उसको घर पर बुलाते थे, तो क्योंकि वो चले गया था छोड़ के, मंदिर में रहता था, उसको घर पर बुलाते थे खाने के लिए, तो बोलता था आऊंगा, उनका लड़का कहता था, लेकिन कुछ नॉनवेज नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे लिए वेज बनेगा। तो वेज बनाते, उसमें मांस को पाउडर बनाकर बड़ी अच्छी तरह, ताकि पता नहीं चले, वो मिक्स करके उसको खिलाते थे कि ये खाएगा तो इसको फिर से वापस आ जाएगा, ये गलत जगह पे चला गया। तो प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को प्रचार करके एक मार्ग दिया, एक दिशा दी, उनको बताया कि जीवन में क्या चाहिए। तो इसीलिए ये दिशा विहीन समाज, जैसे वो हिप्पी दिशाविहीन थे, उनको जीवन का लक्ष्य नहीं पता था, क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे, क्या भविष्य होगा, कुछ नहीं पता था, प्रभुपाद ने उनको एक दिशा दी। और आज देखिए, भले लोग निंदा करें, दम मारो दम या जो भी कहना चाहें, लेकिन आज वही लोग धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगाकर सारे जगत में हरे कृष्णा कह रहे हैं। ये प्रभुपाद का चमत्कार है। तो इसीलिए दिशा भगवान की आवश्यकता है आधुनिक समाज में, एक दिशा प्रदान करने के लिए। आज उन लोगों के लिए उद्देश्य है जीवन का। आज अगर वो हरे कृष्ण कर रहे हैं, आज अगर वो कोई भी चीज कर रहे, भक्ति कर रहे हैं, तो उनका एक उद्देश्य है। दिशा विहीन जीवन नहीं है। लेकिन अन्य सभी लोगों का जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, हमें बताइए क्या दिशा है उनके जीवन की, क्या उद्देश्य है उनके जीवन का, किस लिए जी रहे हैं वे लोग? खाने पीने के लिए, धन कमाने के लिए? ये कोई उद्देश्य नहीं है, ये तो सहायता करने के लिए, उद्देश्य को सहयोग करने की चीजें हैं, उद्देश्य नहीं है। तो पहली चीज भगवान करते हैं, भगवान की आवश्यकता आधुनिक समाज में है एक दिशा प्रदान करने के लिए। दूसरी चीज भगवान की आवश्यकता है सच्चे प्रेम को दिखलाने के लिए। हम लोग इस जगत में सच्चे प्रेम को भूल चुके हैं। ये जो प्रेम कहते हैं ना हम लोग, ये केवल स्वार्थ है। स्वार्थ को एक बड़ी अच्छी पैकिंग देकर उसको प्रेम का नाम दे दिया गया। बस है वही चीज स्वार्थ। कोई प्रेम नहीं है इस जगत में, सच्चा प्रेम नहीं है। वो प्रेम जिसका कोई कारण नहीं हो, वो प्रेम जिसमें त्याग हो, वो प्रेम जो कभी समाप्त ना हो। और उस प्रेम को प्रदान करने के लिए, क्योंकि हम सब प्रेम चाहते हैं। व्यक्ति धन क्यों कमाता है? वो धन इसलिए नहीं कमाता कि धन कमाने से उसको कुछ मिलेगा। वो सोचता है धन कमाकर मुझे, मेरे पास ऐसे लोग आ जाएंगे जो मुझे प्रेम करेंगे, क्योंकि धन नहीं होगा तो कोई मेरे पास नहीं आए। धन इसलिए कमाता है व्यक्ति, या इसलिए कमाता है कि धन कमाकर मैं परिवार के साथ आनंद ले सकूंगा। तो आनंद लेना मतलब परिवार वाले मुझे प्रेम करेंगे। तो हर चीज में व्यक्ति प्रेम ढूंढ रहा है, लेकिन मिलता नहीं। हम धन कमाने में सोचते, व्यक्ति विवाह करता है, सोचता है विवाह क्यों करता है? प्रेम चाहिए उसको, कोई एक ऐसा साथी चाहिए जिससे वो बातचीत कर सके, जिसको जिससे वो प्रेम प्राप्त कर सके। बस मिलता नहीं, धन से नहीं मिलता, किसी और व्यक्ति से नहीं मिलता, लेकिन हम सब ढूंढ वही रहे। हमारे जीवन में कमी वही है। मदर टेरेसा के एक प्रसिद्ध शब्द हैं, वो कहती हैं कि इस जगत में ये जो गरीबी है, ये धन की गरीबी नहीं है, हृदय की गरीबी है। हृदय की गरीबी अर्थात लोगों के पास प्रेम नहीं है। धन नहीं होना ये कोई गरीबी नहीं है। तो क्या व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता बिना धन के? चैतन्य लीला में श्रीधर कोलावेचा का नाम कई बार हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं। श्रीधर कोलावेचा क्या करता था? केले के पत्तों को बेचा करता था। जो धन मिलता था आधा गंगा पूजा में इस्तेमाल कर देता था, आधा अपने लिए करता। क्या धन मिलता होगा? आज भी केले के पत्ते बहुत सस्ते मिलते हैं। अब पता नहीं यहां मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। उस दिन हम कुछ दिन पहले उड़पी में थे, इतना सारा बंडल चार पांच रुपए का, इतने सारे पत्ते आज भी उतने ही सस्ते मिलते हैं, केले के पत्ते। तो उतने ही बेचा करता था। कुछ नहीं था घर में उसके। कपड़े जो पहनता था, कपड़ों में कपड़ा कम, गांठे ज्यादा थी। जहां से फट जाता था गांठ लगा देता था, ऐसे फिर फट जाता तो गांठ, तो कपड़े में गांठ ज्यादा थी। जिस घर में रहता था, जब बारिश होती थी तो पता नहीं चलता था अंदर बैठा है या बाहर बैठा है, एक ही लगता था, क्योंकि घर ही ऐसा था उसका। एक टूटा फूटा उसके पास बर्तन था खाने के लिए, सब जगह से उसको टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। मतलब ऐसा कि चोर उसको हाथ भी नहीं लगा है, घर में कुछ था ही नहीं चोरी के लिए, चोर कहां से आएगा। लेकिन सुखी था। भगवान ने जब उससे कहा, चैतन्य महाप्रभु ने जब अपना रूप दिखलाया, भगवान का रूप, भगवत्ता दिखलाई, सबकी मनों की कामनाओं को पूरा कर रहे थे, सबको बुला रहे थे, मांगो क्या मांगना है। श्रीधर से कहा मांगो क्या मांगना। अब ये देखिए, गरीब व्यक्ति कपड़े फटे हुए, घर घर है या नहीं कुछ पता नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, जो बर्तन है वो टूटा फूटा है, कमाई कुछ नहीं, क्या मांगा उसने? वो मांग सकता था भगवान से कि मुझे बहुत सारा धन दे दीजिए, अगर आपकी कृपा हो तो मिल जाएगा, जैसे हम लोग मांगते हैं। श्रीधर ने नहीं मांगा। श्रीधर ने कहा कि मुझे तो बस वही चाहिए, जैसे एक छोटा बालक आप जब आया करते हैं मेरी दुकान में, झगड़ा करते हैं मुझसे कि मुझे इतने में नहीं इतने में दो, बस वही होता रहे और कुछ नहीं चाहिए। एक रुपया नहीं मांगा भगवान से। क्यों? संतुष्ट था। इसीलिए प्रेम या संतुष्टि हृदय में धन से नहीं आती है। बहुत सारा धन होने से प्रेम नहीं मिलता, उल्टा कभी कभी चला जाता है। बहुत बड़े बड़े राजाओं के महल हैं, विशेष करके पेरिस में एक बहुत बड़ा महल है, जो राजा का महल था उसको म्यूजियम बना दिया गया। इतना बड़ा है कि चलने में 3 घंटे लगते हैं आपको घूमने के लिए, इतना बड़ा महल है उसका। वो राजा जब था तो उसको बड़ा शौक था, लोगों को बुला बुला के अपना महल दिखाया करता था, क्योंकि इतना बड़ा इतना आलीशान महल बनाया, आज भी देखें तो पता चलता है क्या ऐश्वर्य था। तो बुला बुला कर दिखाया करता था राजा, और आते थे सब देखते थे, वाह ये इतना इतना इतना। लोगों को देख देख कर इतनी जलन हो गई कि एक दिन उन्हीं लोगों ने मार डाला उसको, खत्म। तो ज्यादा धन होने से प्रेम नहीं मिलता है, उल्टा लोग शत्रु हो जाते हैं, अरे ये हमसे ज्यादा कमा गया, छोड़ेंगे नहीं इसको। ऐसे होना नहीं चाहिए, तो भगवान की कृपा है, अगर उसके ऊपर हो गई तो खुश होना चाहिए कि अच्छा है उसको मिला, लेकिन लोगों में द्वेष आ जाता है। तो इसीलिए ये जो प्रेम हम लोग ढूंढ रहे, कि धन में प्रेम या व्यक्ति में ढूंढते हैं, कोई विवाह कर लेता है सोचता है प्रेम मिलेगा, या संतान से प्रेम मिलेगा, या मित्र से प्रेम मिलेगा। आधुनिक समाज में कुछ नहीं, सब स्वार्थ पर आधारित है। जब तक आप एक दूसरे को कुछ दे पा रहे हैं प्रेम है, अन्यथा प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम भगवान की भक्ति में है, और भगवान की आवश्यकता अन्य सभी समय से इस समय बहुत ज्यादा है। अन्य समय में लोग भगवान को माना करते थे, पूजा किया करते थे, भगवान की सेवा किया करते थे, थोड़ा बहुत प्रेम था उनमें, संतुष्टि थी, आज नहीं है। इसलिए आज बहुत आवश्यकता है भगवान की। तो भगवान की आवश्यकता है दिशा प्रदान करने के लिए, भगवान की आवश्यकता है प्रेम देने के लिए, भगवान की आवश्यकता है मनुष्य जीवन के उद्देश्य को स्थापित करने के लिए, बहुत आवश्यकता है भगवान की। और इसीलिए हमें भगवान से जुड़ना चाहिए। तो जैसे हम बता रहे थे कि धैर्यता, नम्रता और दूसरों का आदर करना, तब व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है। धैर्य होना चाहिए, ये नहीं कि अभी हमने किया। आजकल सब कुछ इंस्टेंट हो गया है ना, फूड भी इंस्टेंट है। हम लोग देखते हैं प्लेन में जाते हैं तो लोग उला के देते हैं, कुछ ऐसा नूडल्स होते हैं, वैसे पैकेट होता है, तो पूछते नूडल्स लेंगे तो बोलते हैं हाँ लेंगे, तो बस ऐसे ग्लास में गर्म पानी डालते हैं, नूडल्स में गर्म पानी डालते हैं, ऐसे करते हैं, दे दिया रेडी खाने के लिए। घर में तो कितना समय लगता है ना, हमारे कुकिंग करते सुबह 5 बजे से बेचारा 7 बजे तक कुकिंग करके फिर नूडल्स बनते हैं, तो ऐसे रेडी 2 मिनट में 200 रुपया दीजिए, जो भी है खैर। तो हमें आजकल आदत हो गई सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, ये रुकना वुकना कुछ नहीं, इसीलिए सब कुछ एटीएम है ना। एटीएम मतलब सब, रात को भी पैसा चाहिए तो मिलना चाहिए जाकर, रुकना नहीं है, धैर्य नहीं है। अरे यार कल सुबह बैंक खुलेगा, आराम से बैंक में जाओ पैसा लो, नहीं एटीएम चाहिए, रात को अगर मुझे 1 बजे 12 बजे पैसा लगा तो क्या करूंगा। धैर्य किसी चीज के लिए नहीं। तो सब कुछ इंस्टेंट हो रहा है, फूड इंस्टेंट है, विवाह इंस्टेंट है। आजकल लोग कोई बहुत बड़े बड़े, वो पहले तो विवाह हुआ करते थे 4-4, 6-6 दिन सेरेमनीज चलती थी तब विवाह पूरा होता था। आजकल तो विवाह है 10 बजे निकले, पहुंचे 1 बजे घर पे वापस, हो गया विवाह, हो गया इंस्टेंट एकदम, कोई चिंता ही नहीं जाता क्या करना है विवाह में। और अगर समय कम हो पुजारी पंडित को 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, आधा घंटा और कम कर देगा, उसको क्या तकलीफ है, ये इंस्टेंट हो रहा है सब कुछ। तो क्षमा चाहते हैं, आप में से जिन लोगों ने ऐसे विवाह कराया होगा वो लोग सोच रहे होंगे, अरे प्रभु जी को कैसे पता चला हमने पंडित को 1000 रुपए एक्स्ट्रा दिया था। खैर किसी को बताना नहीं। तो सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, धैर्य नहीं है, लेकिन उसको डेवलप करना है, उसको उत्पन्न करना है। भक्ति में धीरज होना चाहिए, मित्रता में धीरज होना चाहिए, संबंधों में धीरज होना चाहिए। संबंध टूटने का कारण ही यही है, धीरज नहीं है। एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, एक दूसरे की सुन नहीं पाते, संबंध खराब हो जाते हैं। इसीलिए भगवान की इस समय में बहुत आवश्यकता है, और भगवान को केंद्र में लाकर ही जीवन के कष्टों से दूर जाया जा सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भक्त हो जाते हैं उनके जीवन में कष्ट ही नहीं है, ये भी नहीं जान, ये भी मत मान लीजिए कि ऐसा हो गया कि भक्त हो गए जीवन में कोई कष्ट नहीं, सोकर उठते हैं तो 56 भोग सामने अपने आप आ जाता है, भगवान व्यवस्था कर देते हैं, कुछ काम करने की जरूरत नहीं, या कहीं जाना है तो ऊपर से विमान आता है, 4 लोग खड़े हैं, आइए सर जहां लेके जाना है। भक्त बनने के बाद भी कष्ट होंगे, तो भक्त बनने के बाद भी कष्ट है, भक्त बनने से पहले भी कष्ट है, भक्ति करने की जरूरत क्या है, सही है ना। हाँ अगर भक्त बनने के कुछ, तो देखिए आजकल हम लोगों को कुछ लालच होता है ना, तब कुछ करते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, बोले हाँ ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि आप भक्ति कीजिए लेकिन आपके कष्ट बने रहेंगे, तो आप बोले फिर हम ऐसे ही ठीक है, इतनी मेहनत क्यों करना हमें, और जीवन में कष्ट आते हैं भक्तों के। हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त, इतना नाम लेते हैं भगवान का, हुआ क्या, 21 बाजारों में कोड़े मारे गए उनको, बताइए। वो भी किस लिए, भगवान का नाम ले रहे हैं इसलिए, क्या लाभ। पांडव इतने महान भक्त भगवान के, भगवान उनके साथ रहते, संबंधी हैं उनके, साथ ही नहीं रहते संबंधित हैं, क्या हुआ बताओ। उनकी पत्नी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, वन में भेज दिया गया, जलाने का प्रयास किया गया, विष दिया गया। तो इतना तो साधारण आदमी के साथ भी नहीं होता, इससे अच्छा तो भक्ति ना करें। अगर भक्ति करके इतने सारे कष्ट सहन करने, तो बिना भक्ति के छोटे मोटे कष्ट सहन करें। बताइए पांडवों के अलावा उस समय किसी के साथ ऐसा हुआ, किसी साधारण नागरिक के साथ ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, उनको जलाने का प्रयास किया, सुना है कहीं पूरे महाभारत में आपने, कहीं नहीं। तो जो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं उनके साथ हुआ, बाकी सब आराम से हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। सीता देवी जो भगवान की पत्नी है रामायण में, और एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए जहां घर से पत्नी को निकाला गया, कोई उदाहरण नहीं। तो जो सबसे भगवान की पत्नी है, भक्त तो छोड़ दीजिए, भगवान की पत्नी है, उनको ही सारी परीक्षा, अग्नि परीक्षा वो देंगी, जंगल में वो जाएंगी, कष्ट वो सहेंगी, और बाकी सारे, वो धोबी भी जिसने बोला वो भी आराम से था, उसको भी निकाल। ऐसा नहीं हुआ कि धोबी को फिर किसी ने जाके मार के उसकी हत्या कर दी, कुछ धोबी भी आराम से। तो फायदा क्या भक्ति करने का, बताइए। भगवान के भक्तों को सारा कष्ट, हरिदास ठाकुर नाम लेते हैं 21 बाजारों, और किसी को नहीं पीटा गया 21 बाजार। पांडव सारे महाभारत में कहीं वर्णन नहीं कि किसी और की स्त्री को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, जलाने का, या वन में भेजा गया। सीता देवी, लाखों उदाहरण तो बोलते जाइए, सारे भगवान के भक्तों को कष्ट है। तो भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अच्छा है ना ऐसे ही रहें, साधारण क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान के भक्तों को कष्ट क्यों आता है, जो भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं उनका जो पथ होता है वो कांटों से भरा होता है, ये भगवान की कृपा है। अगर हमारा पथ कांटों से भरा नहीं है तो मान लीजिए भगवान की कृपा नहीं है। क्यों, अब ये तो आप डरने वाली बात सुन लीजिए थोड़ा ना, आप लोग डर रहे होंगे, अच्छा है कल से हमारा संडे फीस अगली बार सब खाली होगा, कोई नहीं आएंगे, बोले अभी अच्छा है, कांटे आने वाले हैं जीवन में, जाना ही नहीं भगवान के पास। भगवान की कृपा है, अगर जिन भगवान की कृपा जिन पर हो उनका पथ कांटों से भरा, पांडवों का पथ कांटों से भरा, सीता देवी कांटों से भरा, शादी के बाद ही, जब तक रामचंद्र जी से मिली नहीं थी सुखी थी, सही है, जब तक मिली नहीं थी सुखी थी, मिलते ही पहला ही परशुराम जी धाड़ शुरू हो गया, पहले ही बताइए शादी हुई और पति को मारने के लिए आ गया, और वो भी कौन है, परशुराम, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तब जब तक नहीं मिली थी सुखी थी, लेकिन जैसे ही भगवान से मिली सारे कष्ट शुरू हो गए। परशुराम जी आए, घर पहुंची तो उधर से फिर निकाल दिया गया, वन में पहुंची रावण उठाकर ले गया, वहां से वापस आई रामचंद्र जी ने भेज दिया वापस वन में, वहां से वापस आई बोला अग्नि परीक्षा दो इत्यादि। तो सारे कष्ट शुरू तब हुए जब रामचंद्र जी से मिली, उससे पहले तो सुखी थी, है ना। ओके, अब करना चाहिए कि नहीं, भक्ति बहुत हो गया अभी। आपको उत्तर बता दें, क्योंकि अगली बार हम चाहते हैं आप सब आए, नहीं तो पता चलेगा कि सब प्रभु जी ने बहुत बता दिए, कांटे नहीं चाहिए जीवन में। भक्तों के जीवन में कष्ट भगवान कई कारणों से देते हैं। पहला कारण है कि जब हम इस भौतिक जगत में हैं तो इसके नियमों का पालन आवश्यक है। तो जब हमें कुछ ऐसे कष्ट जो हमारे अगले 8 जन्म 10 जन्म 15 जन्म में आने वाले हैं, भगवान कृपा करते हैं, सोचते हैं कि 15 जन्म तक सब दुख भोगेगा, वो सारों को एक ही जन्म में दे देते हैं, खत्म। आपके आगे के 14 जन्म खत्म कर दिए भगवान ने, आपको मुक्त कर दिया, तैयार कर दिया आगे के सुखी जीवन के लिए, केवल थोड़ा सा कष्ट देकर। तो क्या अच्छा है, एक जीवन में कुछ वर्ष कष्ट लेना या 15 जीवन में हर जीवन में कष्ट सहते रहना और भगवान को प्राप्त नहीं करना, सुखी जीवन को प्राप्त नहीं करना? तो अच्छा है कि इस जीवन में थोड़े से कष्ट हो, लेकिन भगवान आगे के सारे कष्टों को मिटा रहे हैं। भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं हम देखते नहीं हैं, हम देखते हैं भगवान कष्ट दे रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे कर्मों को नाश कर रहे हैं। जितने कर्म हैं हमारे, जितने जीवन के, वो नाश कर रहे हैं भगवान, वो हम देख नहीं सकते, इसीलिए कष्टों को देखते हैं। तो बहुत थोड़े से कष्ट हैं। सीता देवी को भले थोड़े से कष्ट हुए, लेकिन प्राप्त क्या हुआ? जिस समय सीता देवी पृथ्वी में समा गई, ये अंतिम समय था जब सीता देवी का, सीता देवी को बुलाया गया सबके सामने, आपको परीक्षा देनी होगी, आपको शपथ लेनी होगी कि आप शुद्ध हैं। उस समय सारे वहां पर खड़े हुए वाल्मीकि मुनि खुद कह रहे थे कि सीता शुद्ध है राम, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा कि प्रजा की खातिर ये देर करना होगा, और सीता देवी उसको सहन नहीं कर पाए, क्योंकि एक बार पहले भी परीक्षा दे चुकी थी। जिस समय युद्ध समाप्त हुआ, सीता देवी आई सबके सामने, सीता देवी आशा कर रही थी कि श्री राम के दर्शन होंगे, श्री राम मुझे स्वीकार करेंगे, और श्री राम ने क्या कहा, तुम्हें जहां जाना है चली जाओ। आश्चर्य, क्यों कहा? उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया, मैंने तो अपने कुल की मर्यादा को बनाए रखने के लिए युद्ध किया कि आगे कोई ये नहीं कहे कि राम रघुकुल की स्त्री को कोई उठाकर ले गया और उसको वध नहीं किया रघुकुल वालों ने, बस इसीलिए मैंने कि तुम्हारे लिए नहीं किया, तुम्हें जहां जाना चली जाओ। फिर ठीक है, अगर मेरे साथ रहना है तो अग्नि परीक्षा दो, अग्नि चिता जलाओ, लक्ष्मण को कहा, वो भी लक्ष्मण को कहा और किसी को नहीं, लक्ष्मण तो वैसे ही जल रहा था अंदर से, खैर लक्ष्मण से कहा चिता जलाओ। तो सीता देवी ने वहां परीक्षा दे चुकी हैं, वन में जा चुकी हैं बिना किसी गलती के, उनको जब वन में भेजा गया उनको पता भी नहीं था किस लिए भेजा जा रहा है, और अब जब सब हो गया, वाल्मीकि मुनि खड़े होकर खुद वो घोषणा कर रहे हैं कि अगर मैंने कोई तपस्या की है, अगर मेरे अंदर कोई बल है, तो मेरे उस बल से, उस तपस्या के बल पर मैं कहता हूं कि सीता शुद्ध है, और अगर मैं ये झूठ कह रहा हूं तो मेरे जितना भक्ति का बल है वो समाप्त हो जाए। इतना बड़ी बात वाल्मीकि मुनि ने कह दी कि जितनी मैंने तपस्या की है, जितनी भक्ति की है, जितना मेरा फल है वो सब नाश हो जाए अगर मैंने झूठ कहा है कि सीता में कोई दोष है। ये सब होने के बाद भी श्री रामचंद्र जी कहते हैं परीक्षा शपथ लेनी होगी। सीता से सहन नहीं हुआ, सीता ने धरती से प्रार्थना की, सीता ने कहा कि मैंने अगर यदि मैं राघवाद अन्यम मनसापी न चिंतहे तथा मैं माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति, अगर मैंने मन में भी कभी श्री रामचंद्र के अलावा किसी का स्मरण नहीं किया है तो हे पृथ्वी देवी, हे माधवी देवी, मुझे स्थान दीजिए। कर्मणा मनसा वाचा यदि रामम समर्चये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति, कि अगर मैंने मन से, कर्मों से, वचनों से केवल श्री रामचंद्र जी की पूजा की है और किसी की पूजा नहीं की तो मुझे स्थान दीजिए। और धरती फट गई, धरती देवी आई और सीता देवी को ले गई। सब देखते रहे क्या हुआ। उस समय जब श्री रामचंद्र एक साधारण मनुष्य के भांति विलाप कर रहे थे, हासीते हासीते, उस समय आकाश से घोषणा हुई, देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने घोषणा की कि सीता देवी तो अपने धाम पहुंच चुकी हैं, आपको वो वहीं पर मिलेंगी। अर्थ क्या है इस जीवन के ये थोड़े से कष्ट, लेकिन प्राप्त क्या होता है भक्त को? आध्यात्मिक जगत। पांडव कहां गए? जब मृत्यु हुई, युधिष्ठिर महाराज चल रहे हैं, पांचों पांडव पीछे चल रहे हैं, चारों भाई उनके, द्रौपदी चल रही है, एक एक कर गिर रही है। द्रौपदी गिर गई, भीम ने पूछा, भीम सबसे निकट थे युधिष्ठिर के, भीम ने पूछा अरे द्रौपदी गिर गई, देखा भी नहीं पीछे घूमकर। फिर धीरे धीरे नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, अंत में केवल युधिष्ठिर महाराज ऊपर पहुंचे। परीक्षा हो गई उनकी, उन्होंने जाके देखा कि स्वर्ग में कर्ण, दुर्योधन इत्यादि आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे भाई कहाँ है, चलो ले चलते हैं। लेके चले और वहां चिल्ला रहे हैं, वो हमें बचाइए, हमें बचाइए, बदबू आ रही है, नरक में पड़े हुए हैं अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर महाराज की परीक्षा हुई, खैर वो तो पास हुए, लेकिन अंत में कहां गए? वे भी भगवान के धाम गए सब। तो पांडवों ने कष्ट सहे लेकिन प्राप्त किया भगवान के धाम को, सीता देवी ने कष्ट सहे प्राप्त किया भगवान के धाम को, हरिदास ठाकुर जिन्होंने इतने कष्ट सहे लेकिन मिला क्या उनको? भगवान स्वयं उनके दर्शन करने रोज आया करते थे। और मृत्यु के समय, जिस समय हरिदास ठाकुर अपना देह छोड़ रहे थे, श्री कृष्ण उनके सामने थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उन्होंने प्रार्थना की थी, जिस दिन उन्हें देह छोड़ना था सुबह चैतन्य महाप्रभु आए, पूछा उनसे हरिदास ठाकुर ने, कहा बस एक ही इच्छा है, आपकी लीला समाप्त होने से पहले मैं जाना चाहता, मैं देख नहीं सकता आपकी लीला समाप्त होते हुए। और चैतन्य महाप्रभु ने पूरी की इच्छा। कीर्तन हो रहा है, चारों तरफ भक्त कीर्तन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बहुत भक्तों को लेकर आए और कीर्तन हो रहा है। हरिदास ठाकुर समझ गए मेरा समय आ गया, जोरदार कीर्तन, सारे भक्त कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों को चैतन्य महाप्रभु के मुख पर लगा दिया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, उन्होंने खुद उनके शरीर को उठाकर फिर स्नान करवाया और फिर उनको समाधि दी। तो हरिदास ठाकुर को क्या मिला? भगवान का स्नान। तो इसीलिए भक्तों के जीवन में अगर थोड़े बहुत कष्ट आते भी हैं, लेकिन जो चीज वो प्राप्त करते हैं वो कई जन्मों में कोई प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए भक्ति करनी चाहिए। खैर, कहने के लिए बहुत कुछ है, समय हो गया है। अगले रविवार को जगन्नाथ जी की कथा को आगे कहेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि हमारे जीवन में अगर भगवान का स्थान नहीं है तो जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो बहुत थोड़े समय के लिए है। शाश्वत चीजें श्री कृष्ण की भक्ति में ही प्राप्त हो सकती हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत जल्दी हम लोग उत्सव मना रहे हैं, 8 जनवरी को है, ज्यादा दिन बाकी नहीं है, इतना बड़ा उत्सव है इसलिए 20 दिन बहुत कम है। आप सबसे विनती है कि उस उत्सव में हमें बहुत सी सेवाएं लगेंगी, पंडाल बहुत बड़ा बनता है, प्रसाद बांटना होता है, रथ जब चलता है तो उसकी व्यवस्था करनी होती है, बहुत सारी सेवाएं हैं और भक्त बहुत कम हैं, इसीलिए आप सब सेवाओं में जुड़ें। और इस रथ यात्रा को सफल बनाएं। रथ यात्रा का उद्देश्य एक ही है। देखिए हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं। आप में से कई लोग जानते नहीं होंगे कि पहले से ही भक्तों ने करीब 1-2 महीने से शुरू कर दी है मेहनत। घर घर जाकर धन इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से जाकर मांग रहे हैं, बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। कोई कह देता रे क्यों आ जाते हो बार बार, मत आया करो इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो सब कर रहे हैं। फिर इतनी सारी व्यवस्था, बहुत सारी चिंता लेनी पड़ती है। उन 3 दिनों में कई भक्त सो भी नहीं पाते हैं ठीक से, कई भक्तों को वहां बीच पर सोना पड़ता है जगन्नाथ जी के साथ, ऐसे बहुत कुछ तकलीफ होती है। सब उद्देश्य केवल इतना है कि कारवार के लोगों को भगवान का नाम सुनाई दे, वे लोग आए वहां पर बैठकर कुछ कथा सुने। बड़े बड़े सन्यासी आते हैं इस रथ यात्रा में। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज आ रहे हैं और परम पूज्य राम गोविंद महाराज, जो शायद पहले कभी नहीं आए हैं यहाँ पर कारवार में, वो भी आएंगे। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं हरिपाद प्रभु, वो भी आने वाले हैं। और अगर संभव हो सका तो और एक बड़े वरिष्ठ सन्यासी हैं भक्ति राघव महाराज, परम पूज्य भक्ति राघव महाराज, तो वो भी हो सकता है कि इसमें आए। और भी कई वरिष्ठ भक्त आ रहे हैं तो उनके दर्शन, उनके मुख से लोगों को कुछ सुनने मिले और साथ साथ भगवान का नाम सबको सुनने मिले। इस उद्देश्य के लिए हम लोग इतनी बड़ी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हमारे लिए बहुत बड़ी व्यवस्था है, हम लोग बहुत थोड़े से भक्त हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। तो आप सब इसमें मदद कीजिए ताकि ये रथ यात्रा महोत्सव बहुत सफल हो सके। तो इस समय जैसे भक्त बहुत जगह से थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा कर रहे हैं, आप में से भी कोई लोग जिन्होंने अभी तक कलेक्शन की बुक नहीं ली हो, लेकर थोड़ा थोड़ा जहां भी हो अपने आसपास इकट्ठा कीजिए ताकि भगवान की सेवा अच्छी तरह हो सके और रथ यात्रा उत्सव में भी जो भी सेवा हम कर सकें कृपया आप सब कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।